तेरी क्षय मिलने के कारण आज ये लड़की हमारे सर पर चढ़कर तांडव कर रही है। अन्वई, जो शांति से बैठा अपनी बीवी और माँ के बीच मचे घमासान को एंजॉय कर रहा था, वो एकदम से गंभीर हो गया। गलत क्या कहा उसने? मैंने तो आपको पहले ही समझाया था कि जो देंगी वही पाएंगी। हर कोई भाभी जितना महान और शरीफ नहीं कि आपकी जली कटी बातें, कड़वे बोल और जहरीली जुबान से निकले तीरों को झेलने के बाद भी आपको सर आंखों पर बिठाकर पूछता रहे। आपके द्वारा हर बार अपने और अपने परिवार के अपमान के जहरीले घूंट पीकर भी आपकी इज्जत करता रहे। इसलिए अगर आपको सम्मान चाहिए तो दूसरों को सम्मान देना भी सीखिए, वरना अगर आपकी दुर्गति होगी तो उसकी जिम्मेदार आप ही होंगी। जैसा करेंगी वैसा ही भोगेंगी, जहर बोएंगी तो वही पाएंगी भी। अब तो बेटा भी बेटा नहीं रहा था, जोरू का गुलाम बन गया था। बीवी को माँ की इंसल्ट करते देखकर भी उसी का साथ दे रहा था। ऐसा मुझे नहीं, हमारी पूजनीय रूपाली जी को लग रहा था। और अब अपना दुखड़ा लेकर वे सीधे अपने आज्ञाकारी श्रवण कुमार बेटे के पास पहुँच गई थीं। अक्षय, तुम कुछ नहीं कहोगे? ये बित्ते भर की लड़की कैसे जुबान लड़ा रही है हमसे? और तेरा ये नालायक भाई भी अपनी पत्नी मोह में अंधा होकर उसी का साथ दे रहा है, तेरी माँ का अपमान कर रहा है। मम्मी, अब इसमें मैं क्या कहूँ? अंतरा अन्वई की पत्नी है, अगर वो कुछ गलत कहे या करे तो उसे सही रास्ता दिखाना अन्वई का काम है। अगर मेरी बीवी गलती करती है तो मैं ही उसके लिए जिम्मेदारी लेता हूँ, पर उन्होंने तो कभी आपसे ऊंची आवाज में बात नहीं की और अंतरा को कुछ कहने का हक मुझे नहीं है। अन्वई आपका बेटा है, जब आपकी नहीं सुन रहा तो मेरी कैसे सुनेगा? वैसे भी कुछ गलत तो नहीं कहा अन्वई ने, चाहे सास बहू या माँ बेटी, बाप बेटे हों या ससुर दामाद, इज्जत प्यार और सम्मान दोनों तरह से मिलना चाहिए। हर कोई अहाना जैसा नहीं होता और ना ही हर बेटा मेरे जैसा होता कि अपनी माँ द्वारा अपनी पत्नी के लाख बार अपमान किए जाने के बाद भी उसे समझाता रहे कि उसकी माँ का सम्मान करे और उसकी बीवी उसकी बात बिना किसी शिकायत के मानती भी रहे। इसलिए अगर आपको अपने अपमान का इतना ही दुख है तो अपनी बहुओं के सम्मान की चिंता भी कीजिए, तभी ये परिवार एक साथ रह सकेगा, वरना टुकड़ों में बटकर रह जाएगा। अक्षय ने बेहद शांति और शालीनता से अपनी माँ को समझाया था और इन सबसे खुद को दूर कर लिया था। उसने हकीकत का आईना दिखा दिया था। उसकी आवाज में एक दर्द झलक रहा था, आंखों में दुख, पछतावे के साथ साथ शर्मिंदगी भी थी। शायद अपनी गलतियों भूलों का एहसास था उसे। अक्षय का जवाब सुनकर जहां रूपाली जी अविश्वास से फटी आंखों से बस उसे देखती ही रह गई, वहीं आहाना के जहन में पिछली कड़वी यादें उभर आईं और उसकी पलकें भी भीग गईं। अभिजीत जी से तो रूपाली जी को वैसे ही कुछ खास उम्मीद नहीं थी, और जिससे थी आज वो भी उनके खिलाफ खड़ा था। रूपाली जी का चेहरा गुस्से, अपमान और दुख की शिद्दत से लाल हो गया और एक बार फिर हर बात का जिम्मेदार अपनी बहुओं को ठहराते हुए उन्हें कोसते हुए गुस्से में वहां से चली गईं। अक्षय अपना सर पकड़कर बैठ गया। अपनी माँ की हरकतों को देखकर वो समझ नहीं पाता था कि ऐसा क्या करे कि सब ठीक हो जाए। जितना वो उन्हें समझाने की कोशिश करता, वे अपने मन में उतना ही जहर भर लेतीं। किसी बात का जैसे उन पर कोई असर ही नहीं होता था। उनकी अपनी अलग सोच थी जिस पर वे कायम रहतीं, जो चाहतीं वही करतीं, चाहे उसका किसी पर भी कितना ही गलत असर क्यों ना हो। उनका अहंकार इतना बढ़ गया था कि उन्हें झुकना मंजूर नहीं था। वहां मौजूद सब लोग परेशान से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अभिजीत जी ने अक्षय के कंधे पर हाथ रखा तो वो सर घुमाकर उन्हें देखने लगा। बेटा, तुम परेशान या दुखी मत हो, तुमने कुछ गलत नहीं किया। जानता हूँ पापा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, और अगर किया है तो आहाना के साथ किया है। वो मेरे भरोसे अपना सब कुछ छोड़कर इस घर में आई थी, पर मैं शादी के इतने सालों बाद भी उन्हें इस घर में वो जगह, वो इज्जत नहीं दिला पाया जो मेरी पत्नी और इस घर की बहू होने के नाते उन्हें मिलनी चाहिए थी। मम्मी का व्यवहार उनके प्रति पहले दिन से ऐसा ही है, और वो सब खामोशी से सहती आ रही हैं सिर्फ मेरे लिए, और मैं खुद को इतना बेबस और लाचार महसूस करता हूँ कि चाहकर भी उनके लिए कुछ नहीं कर पाता। आज तक कितनी ही बार मम्मी को समझाने की कोशिश कर चुका हूँ, पर पता नहीं उनके मन में क्या है कि वे कुछ समझना ही नहीं चाहती। जब जब मैं आहाना के लिए स्टैंड लेता हूँ, माँ के मन में उनके लिए नाराजगी और कड़वाहट और बढ़ जाती है। मैं लाख कोशिशों के बाद भी कुछ ठीक नहीं कर पा रहा। मैंने सोचा था कि अंतरा के इस घर में आने के बाद शायद माँ में कुछ बदलाव आए, पर अब वो उम्मीद भी टूटती जा रही है। मुझे इन हालातों के ठीक होने के दूर दूर तक कोई आसार नजर नहीं आ रहे, और अगर सब ऐसा ही रहा तो कब तक ये परिवार एक साथ रह पाएगा? अब तो मैं अपनी नज़रों में गिरने लगा हूँ, मुझे खुद से नफरत होने लगी है। अपनी ज़िंदगी में बुरी तरह नाकाम हो गया मैं। अच्छा डॉक्टर तो बन गया, पर ना एक अच्छा बेटा बन सका और ना ही पति होने का फ़र्ज ठीक से निभा सका। अक्षय अब इन सबसे बुरी तरह परेशान हो चुका था। उसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। खुद को आहाना का गुनाहगार पाता था वो। उसकी इस हालत का जिम्मेदार खुद को समझता था। थक गया था वो इन हालातों से लड़ते लड़ते। आसान नहीं था उसके लिए आहाना और रूपाली जी के बीच तालमेल बिठाना, वो भी तब जब रूपाली जी को आहाना फूटी आंख नहीं भाती थी। हमेशा चुप रहने वाले अक्षय ने जब अपने मन की कुछ बातें कहीं, तब कहीं जाकर सबको एहसास हुआ कि वो कितना परेशान है, कितना स्ट्रगल कर रहा है और किन मुश्किलों का सामना कर रहा है। अपने बेटी को इस हाल में देखकर आज अभिजीत जी को शिद्दत से अपनी भूल का एहसास हो रहा था, पर वे भी तो उसकी ही तरह बेबस और लाचार थे।